Lube, the one-stop shop. 519-622-0660. Jack QuickTruckLube.com. QTL, because we care. Quick Truck Lube.
अलहुदा इंस्टीट्यूट कनाडा पेश करते हैं वेस्टर्न कनाडा टूर 2024 विद डॉक्टर फरक हाशमी एंड डॉक्टर इदरी जुबैर। ये टूर 29th ऑफ जून सैटरडे के दिन कैलगरी से शुरू होगा और 14 जुलाई संडे के दिन सने वैंकूवर पर खत्म होगा। इस टूर की मुकम्मल मालूमात के लिए कॉल 6473884595। क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ अब महफूज हाथों में है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
सुनो करां दे ओ मालको, अगर तुसी ब्रैम्पटन दे वार्ड 1, 3, 4, 5 या 7 दे विच रहंदे हो और तुहाडे कोल 1 तो 4 रेंटल यूनिट ने, ते फेर तुहानू अपने कार दा लाइसेंस लेना पेगा। एक कदम तुहाडी सुरक्षा और क्वालिटी हाउसिंग वास्ते चकिया जा रहा है। तमाम करां दे मालिक, अगर तुसी अपने रेजिडेंशियल लाइसेंस वास्ते 3 जून तक अप्लाई करदे हो ते तुहानू तुहाडी कंप्लीट फी उत्ते छूट भी मिलेगी और तुहानू फी एग्जम्पशन वास्ते कंसीडर भी कीता जा सकता है। तमाम समझदार कार वालियो, ए तुहाडा आखिरी चांस है। ज्यादा जानकारी वास्ते विजिट करो brampton.ca/rrl।
ओए, एक ब्लॉकबस्टर प्लान बनाइए। पूरी मस्ती, मजे, नचना गाना हो जाए।
ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਟੋਲਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਓ ਤਿਆਰੀ। ਰੋਜਸ ਮੋਬਾਈਲ ਕਸਟਮਰ ਬਣੋ, ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਜਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਕਾਨਸਰਟ ਦੀਆਂ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਾਓ। ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਸਵਿਚ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਰੋਜਸ ਗਿਵ ਅਵੇ / ਦਿਲਜੀਤ ਤੇ ਜਾਓ।
ਚਾਂਦਨੀ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ,
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਚੋਇਸ, locations, sound system, innovations, Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience, corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Sare package ka naam, Chandni Banquet Hall. Aaj hi call kijiye, 437-218-8734, chandnihalls.ca. Chandni.
Ji Simon, welcome back again. एंड नाजरीन, मैं भूला नहीं हूँ आप लोग सामीन एंड नाजरीन, वेलकम बैक अगेन। 6:03:22 हमारी घड़ी में हो चुके हैं, स्टिल ब्यूटीफुल। 26 पटक गया भाई, 26 पे अटको फाय है, नीचे नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा, बस ये समझ लीजिए कि 26 डिग्री टेम्परेचर है। काश ऐसा पूरे साल रहता, कैसे हो सकता है, पाकिस्तान चले जाए। और सब ट्यूसडे का दिन जून की 25th और 26 डिग्री टेम्परेचर से मैंने बताया आपको। बढ़िया चलेंगे हम न्यूज की जानिब। अगर मुझ में आपको एनर्जी नजर नहीं आ रही है तो उसकी एक वजह है, बताऊंगा नहीं। दिस पोर्शन ऑफ द न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय कैलेडन सब्जी फार्म। वहां पर आजकल जो है आपको रात की रानी, जैस्मीन, तुलसी और बहुत सारे डिफरेंट किस्म के फूल पत्ते मिलेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपने सब सब्जियां लेनी हो तो बीन्स हैं, भिंडी है, चिलीज हैं, टोमेटोज हैं, एग प्लांट हैं एंड मच मोर। और अगर आपको देसी खाद चाहिए हो, बड़ी अच्छी खाद इनके पास है, आप पॉट्स हैं, टूल्स हैं, ये सब के लिए आप पहुंच जाइए कैलेडन सब्जी फार्म, 12050 एयरपोर्ट रोड कैलेडन में, 9058409000 इनका फोन नंबर है। डेंटिस्ट्री और मिसेस सागा की बात करते चलूं, डेंटिस्ट्री और मिसेस सागा डॉक्टर नाजिया रहमान यहां पर होती हैं। फैमिली ब्रेसेस कॉस्मेटिक इम्प्लांट डेंटिस्ट्री क्लोज टू योर होम, दोनों लोकेशन ब्रैम्पटन के इलाके में। न्यू एंड इमरजेंसी पेशेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। डॉक्टर नाजिया रहमान कहती है कॉम्प्रीहेंसिव डेंटल केयर, मॉर्निंग इवनिंग वीकेंड्स एंड सेम डे इमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स, डायरेक्ट बिलिंग टू इंश्योरेंस कंपनी एंड इजी पेमेंट ऑप्शन। डॉक्टर नाजिया रहमान का फोन नंबर नोट कर लें, हमारी और आपकी डेंटिस्ट 9058721100। ओपन माइक कैफे, ओपन माइक कैफे सब ये आपको मिलेगा 1310 डंडा स्ट्रीट ईस्ट, 1310 डंडा स्ट्रीट ईस्ट इन मिसेस सागा या मिस्टर सागा, जहां भी जाना आप जाएं। यहां पाकिस्तान के लजीज खाने हो तो आप पहुंच जाइए ओपन माइक कैफे पर, 416-526-6800 इनका फोन नंबर है। अब ले सकते हैं साहब, उनकी तबीयत तो सही है, हमारी तबीयत खराब है, तो वही कर लें जो कुछ करना है। अब तो शेयर नहीं करना जो कुछ शेयर। शेर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। अच्छा मजीद भाई, अभी तो आप मुझे बड़े ताने दे रहे थे, मैं जवान हूँ, मैं तुम जैसे बूढ़े लोगों के साथ रह के मैं जो है मैं
इसीलिए हो गया
वो जो है बैड फील कर रहा हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ।
exactly. सुबह मैं आता हूँ ना यहाँ पर, तो मैं हर एक सारे लोगों को यहाँ पर उनके करीब जाके सलाम दुआ करके हाथ मिलाता हूँ मैं, तो वो जो है सब आज का दिन ऐसा हुआ कि जब फर्स्ट क्लास आया था मैं एकदम हशाश बशाश, और जब आया वहां पर तो एक पहली जो देखी मैंने तो क्या है, बस ठीक है वैसे ही है। अच्छा भाई ओके, चलो 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 नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन के पास गए। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, क्या हाल है? बस ठीक ही है, ओ याल्ला एक वैसे ही हूँ, एक ठीक ही है, और फिर आगे गया तो वहां से
छींके मार रहा था जोर जोर से,
एक आदमी छींके मार रहा था और दूसरा आदमी जो है वो सही मिला मुझे। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक फर्स्ट क्लास मजे में।
हाँ उसकी जो है ना अंडर द टेबल डील चल रही है, बाकियों की चल नहीं रही है, तो इसलिए बाकियों के हालात इतना ढीले हैं। उसके पास पैसे बहुत लंबे आ रहे हैं उसके पास।
अच्छा।
हाँ हाँ हाँ, जैसे आपके पास लिफाफे आ रहे हैं ना माजिद भाई।
हाँ।
आपका कोट हमेशा लिफाफों से भरा था, उसके पास भी बहुत लंबे पैसे आ रहे हैं।
बड़ी
बाकी है। सारे जो है बेचारे मस्कीन गरीब हुए हुए हैं इतने।
हाँ।
रोटी खाने के पैसे नहीं है, कपड़े फट गए हैं लोगों के।
अच्छा। फिर कई लोगों ने प्रॉमिस किया था कि मैं फटे कपड़े पहन के आऊंगा।
हाँ चलो माजिद भाई, आपका दिल खुश करने के लिए कल पहन ही आएंगे, अगर शायद आपको तरस आ जाए और आप बोनस दे दें। लेकिन वैसे तो मुश्किल है, सारे लिफाफे आप जेब में रख के ले जाते हो अपने साथ, किसी को पूछते तो हो नहीं हो आप। लेकिन वैसे आज जो है ना, आई लव द कलर ऑफ योर जैकेट, इट्स ब्यूटिफुल।
थैंक यू,
आई लव इट।
थैंक यू,
द कलर इज सो।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।
वो आपका चेला भी आपकी अब नकल करना शुरू हो गया। वाओ दैट्स सो कूल, आई रियली लव द कलर, इट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस,
आई रियली मीन इट, थैंक यू सो मच।
ठीक है ठीक है, और आप ठीक है, खैरियत से माजिद भाई?
अभी तो मैं बताया पूरी स्टोरी।
हाँ आपको सुनाइए ना, लेकिन घर में सब खवातीन ठीक है ना? यहाँ पे तो खवातीन सारी बीमार है, घर नहीं ठीक है।
हाँ घर में
नहीं नहीं, मुझे जो रिपोर्ट मिली है वो आपके घर की खवातीन ठीक नहीं है, आपकी जो है एक जो आपके घर में खातून है कोई भाभी है या क्या है, वो आपके भाई को कह रही है परा हट, वो ज्यादा बेचारा हट गया तो कहती है अब तुम बहुत परे हट गए हो, फिर आप फिर उसको कहा भाई तुम, आपको शिकायत की उन्होंने आके कि भाई देखो ये कितना खराब है आपका भाई, ये बदल नहीं रहा है, तो जब वो बेचारा बदल गया कहते अब तुम बदल बहुत गए हो। हैं अच्छा आप की जो बेगम है वो तो खैर इतनी अच्छी है ना, वो तो आपको कुछ कहती नहीं, इसीलिए आप बिगड़ गए हैं माजिद भाई।
बिगड़ गया?
हाँ बहुत बिगड़ गया, मुंडा साडा बिगड़ गया, मुंडा साडा बिगड़ गया,
माजा लादला बिगड़ गया,
बिगड़ गया जी। आप बिगड़ गए, तो आपके आसपास जो खवातीन है ना वो बस यही कुछ कर रही है और मर्द बेचारे बहुत परेशान है उस पर।
हाँ। अच्छा मेरा ख्याल है कि
खरबे कर लें कुछ,
खरबे कर लें आप तो ज्यादा बेहतर है, ये तो खबरें चलती रहेंगी ये वाली।
हाँ हाँ
ये वाली कहीं नहीं जा रही है।
अच्छा जी,
जो लोग इंटरेस्टेड है मोर इनटू
दूसरी खरबे।
हाँ
जिसमें रोना पीटना है,
रोना पीटना धमाके। हाँ। उसने उसको कुछ कह दिया, उसने उसको लटका दिया, उसने उसको जला दिया।
हालांकि हमने तो इनको तो कल सारी शायरी सुनाई थी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना, फिर भी लोगों को कुछ समझ नहीं आई,
कोई समझ नहीं आया,
कोई समझ नहीं आया, उन्होंने कोई गंदी खबरें सुननी है।
हाँ जी वो सब आप लेके आते, आपने आदत डाल दी उनमें।
अच्छा 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 अच्छा। हाँ। गंदी खबरें सुनने का
जब तक आप शुरू ना करें।
कहानियां
और वो भी कौन सी। हाँ जी लोग अब ट्रूडो साहब से कह रहे हैं कि भाई रिटायर हो जा तू। क्यों रिटायर हो जाऊं मैं,
एक चंगा बोला मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ कंट्री का।
हाँ कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं क्यों रिटायर हो जाऊँ। वो दूसरे कहते जी
वो नहीं आने तो साड़ी वाली किस तरह आएगी। अच्छा जी चलो ठीक है जी, हम आपको कहानियां सुनाने से पहले बता दें दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह जी। राजा बादशाह जी के पास बहुत अच्छी कवरेज है आपके होम और ऑटो इंश्योरेंस की, तो आप राजा बादशाह जी से बात करें और ये कहते हैं जी मैं बहुत सारे आपके पैसे बचाऊंगा, ऑल स्टेट के साथ काम करते हैं। इनका नंबर है 6472903773। डॉक्टर फियाज कुरैशी वो कहते हैं जी मैं हर तरह की आपको डेंटिस्ट्री देता हूं ताकि आपके दांत मोतियों की तरह नजर आए, हैं जी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से चमकते हुए अंधेरे में भी चमकें तो आप डॉक्टर फियाज कुरैशी के पास जाएं। इनके तीन क्लिनिक्स हैं, दो मिसिसागा एक स्कार्बरो में। मिसिसागा का जो क्लिनिक्स है उनका नंबर है 9052325678 और जो स्कार्बरो में है वो दैट इज 4167579999 और ओंटारियोज लार्जेस्ट सलाल पाकिस्तानी वफे विलेज टेस। यहां पे होते हैं फैजल चट्टा साहब, इनके पास जाएं, इन्होंने भी बहुत तरक्की कर ली है हमारे साथ एडवर्टाइजिंग कर करके। देख ले आप हमारे साथ एडवर्टाइजिंग का कितना फायदा, पहले इनका एक ही रेस्टोरेंट था मिसेज आवा में, है जी 4141 डिक्सी रोड पे और इसका नंबर था 9052323663। अब इनका दूसरा रेस्टोरेंट जो है ओकविल में आ गया 2294 लेक शो रोड वेस्ट, उसका नंबर है 9052262294। ठीक है जी। अच्छा जी रोना तो जो है मजद भाई आपने डाल ही दिया था, मैं थोड़ा और रोना डाल देती हूँ इसमें। जो कल हार गए हैं बाई इलेक्शन है जी, टोरंटो सेंट पॉल का जो फेडरल बाई इलेक्शन था उसके अंदर आपको पता ही है कि बहुत लंबे अरसे से यहां पे हमने सारी आपको कहानी सुनाई थी इस जो राइडिंग है उसकी के लिबरल्स का ये बड़ा स्ट्रांग होल्ड था और बड़ी इसके ऊपर बातचीत भी हो रही थी, लेकिन बहरहाल जी कंजर्वेटिव कैंडिडेट जो है डॉन स्टुअर्ट उन्होंने कल हराया अपने जो लिबरल कैंडिडेट है लेज़ली चर्च उनको यहां पे, और 500 वोट्स उनके ज्यादा थे। जैसे कि अभी आपको माजिद भाई ने बताया जब इलेक्शंस कनाडा ने पोल्स जो हैं वो अनाउंस किए, ये जो न्यूज जो थी ये जो वॉर रूम से कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी के उसमें काफी उसने शॉक वेव्स भेजी, दोनों पार्टी बड़ा सरप्राइज हुई क्योंकि कंजर्वेटिव्स का इतना ख्याल नहीं था कि शायद वो जीत सकते हैं, जब जीते तो जाहिर है उनको बड़ी हैरत हुई। स्टुअर्ट जो है उनको 42.1% वोट्स मिले विद 15,555, चर्च जो है उनको 40.5% वोट्स मिले विद 14,965 बैलेट्स कास्ट फॉर हर। एनडीपी की जो अमृत परहार थी वो शी जस्ट रिमेन डिस्टेंट थर्ड, ग्रीन पार्टी के जो क्रिश्चियन कलर्स थे वो फोर्थ नंबर पे आए। तो अब यहां पे कब्जा जमा लिया है कंजर्वेटिव पार्टी ने, ठीक है, तो अब इनके लिए मुश्किल हो गया, अब इनको इसी तरह 20 साल जीतना पड़ेगा, है मजी सही
exactly.
है ना, वरना तो इनका फिर बेंचमार्क नहीं बनेगा। अगर इलेक्शंस में ये नेक्स्ट टाइम हार गए तो बस फिर उन्होंने कहेंगे ओ जी ये तो ऐसे फ्लूक था, है जी, तो ये जो फ्लूक में ऐसे हुआ। अच्छा जनाब ये जो अभी आप खबर सुना रहे थे माजिद भाई, ये जो प्रोविंशियल टास्क फोर्स है जो कि कॉल जैकिंग को प्रोब कर रही थी ऑन्टेरियो में, जिसने कि अरेस्ट किए 124 लोगों को और रिकवर किए 177 स्टोलन कार्स जिनकी के वैल्यू $10 मिलियन थी, उसकी थोड़ी सी मैं डिटेल्स आपको और बता दूं कि ये जो अरेस्ट और रिकवरीज हुए हैं ये पिछले 7 महीने से पुलिस इसके ऊपर काम कर रही थी। दे स्टार्टेड इन सितंबर 2023 और मार्च 2024 में इनको जो है कामयाबी मिली। 749 क्रिमिनल चार्जेस जो हैं वो इन लोगों के ऊपर लगाए गए हैं, 8 फायर आर्म्स इनके पास से मिले थे। इंटेलिजेंस जो गैदर की थी टास्क फोर्स ने जिसका के नाम इन्होंने रखा था प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट टाइटेनियम, उसके अंडर ये एक क्रिमिनल नेटवर्क को जो है इन्वेस्टिगेट कर रहे थे जो कि बहुत ही वायलेंट ऑटो थेफ्ट्स और होम इन्वेजन क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व था, तो उसकी वजह से जो है ये इनको कामयाबी मिल चुकी है।
अगर मैं कोशिश की शारदा जी के मुझे कहीं से थोड़े नाम मिल जाए, मगर नाम कहीं
अभी उन्होंने बताए नहीं है, अभी बताए नहीं है, अभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। अच्छा टोरंटो पुलिस जो है उसने कहा जी कि ये जो क्राइम्स हैं सिर्फ ये ऑटो थेफ्ट ही नहीं और भी बहुत सारे बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा जी कि जिस तरह के टोरंटो के अंदर हेट क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, 55% ज्यादा हो गए हैं हेट मोटिवेटेड क्राइम्स कंपेयर टू लास्ट ईयर विच इज 2023। डेप्यूटी चीफ रॉबर्ट जॉनसन जो हैं उन्होंने कहा कि जी ऑन एवरेज 5 हेट क्राइम्स पर डे की कॉल्स हमको टोरंटो पुलिस को अब रिसीव होना शुरू हो गई है, इसमें ज्यादातर एंटी सेमेटिक हैं विच अकाउंट फॉर 45% ऑफ 221 अलेज्ड हेट क्राइम्स दिस ईयर, अभी साल भी पूरा नहीं हुआ है। उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये जब से इसराइल और हमास की वॉर शुरू हुई है उसकी वजह से ये ज्यादा बढ़ गए हैं। पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया 1378 जो कॉल्स थे ऑफ हेट क्राइम्स, 333 जो थे वो हेट मोटिवेटेड थे, 107 इसके अंदर उन्होंने अरेस्ट किए हैं पुलिस ने, 268 को चार्ज किया फॉर अलेज्ड हेट क्राइम्स, 88% अलेज्ड क्राइम्स जो हैं वो अगेंस्ट प्रॉपर्टी हैं। तो काफी जो है टोरंटो हालांकि बड़ा ही हब है, आपको पता ही है वन ऑफ द वेरी पॉपुलर सिटीज इन द वर्ल्ड है, लेकिन क्राइम्स जो हैं वो भी दबादब यहां पे चल रहे हैं। स्टैट्स कनाडा की आज जनाब खबर आई है और उसके मुताबिक एनुअल इन्फ्लेशन जो है वो राइज कर गई है 2.9% में मई में, और वो कहते हैं जी कि जो सर्विसेज थी उनकी प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई थी। अभी हमने आपको अप्रैल में बताया था कि इन्फ्लेशन जो है 2.7% पे आई है और फिर अब मई में ऊपर चली गई है। सर्विस प्राइसेस जो थी वो 4.6% जो है वो ऊपर गई फ्रॉम 2023, जो कि शो करती हैं 4.2% इंक्रीज इन अप्रैल। और इसके अलावा वो कहते हैं जी कि बैंक ऑफ कनाडा अब जो बेस करेगा अपना नेक्स्ट डिसीजन जो कि जुलाई 24 को आने वाला है, तो वो ये सारे आंकड़े देखेगा। अभी जाहिर है कि जून के फिगर्स जो हैं वो अभी तक नहीं आए हैं, जुलाई में जिस वक्त ये डिसीजन अपना बनाएंगे उस वक्त तक जून के फिगर्स भी आ जाएंगे। मॉर्गेज इंटरेस्ट जो कॉस्ट है वो भी ऊपर चली गई है बहुत ज्यादा, 23.3% कंपेयर टू 2023। रेंट्स जो हैं उनकी प्राइसेज ऊपर गई हैं 8.9%। ट्रैवल एंड टूर की प्राइसेज मई में जो थी वो ऊपर गई हैं 6.9%। एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है प्राइस अप 4.5%। आई मीन दीज आर ऑल प्राइसेज कंपेयर टू 2023। गैस के प्राइसेज 5.6% ऊपर गए हैं, ग्रोसरी 1.5% विच इज हायर कंपेयर टू अप्रैल जब ये प्राइसेज जो थी 1.4% पे ऊपर गई थी। और लोग जो हैं उन्होंने पे किया 22.5% मोर फॉर ग्रोसरीज इन मे कंपेयर्ड विद मे 2020। तो अब खाने पीने की चीजों के ऊपर भी इतना ज्यादा उछाल आता जा रहा है। तो मतलब कैसे चीजें चलेंगी, क्योंकि जो है वो जॉब्स तो है ही नहीं मार्केट के अंदर, तो जॉब्स भी नहीं है, सैलरीज भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो कैसे चलेगा। मॉन्ट्रियल पुलिस जो है जी उसको बुलाया गया इंटरवेंशन के लिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि विक्टोरिया स्क्वायर के ऊपर क्वीन विक्टोरिया का जो स्टैचू लगा हुआ था उसको तोड़ने की और गिराने की कुछ लोगों ने कोशिश की। ये यहां पे इन्होंने पहले प्रो पैलेस्टीनियन एनकैंपमेंट जो था इस एरिया के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम ये पब्लिक स्पेस में इन्होंने लगाया था, और पुलिस वाले जो थे वो ऑलरेडी ऑफिसर्स पेट्रोल कर रहे थे और स्टॉप कर रहे थे कि इस स्टैचू के पास मत जाओ, फिर भी वो जो है उसके ऊपर पेंट डाले जा रहे थे और उसको गिराने की कोशिश की जा रही थी। ये जो यहां पे एनकैंपमेंट में लोग बैठे हैं वो कहते हैं जी कि ये दे आर कॉल्ड डाइवेस्टमेंट फॉर पैलेस्टाइन, वो कहते हैं जी कि ये जो है आप डाइवेस्ट करें 14.2 बिलियन के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इन 87 कंट्रीज जो कि इसराइल का को जो है हेल्प कर रही हैं। और उसमें उन्होंने कहा जी कि जो क्यूबेक में जो तेल अवीव का ऑफिस भी है उसको भी शट डाउन करने की जरूरत है, आप तमाम अपने ट्रेड टाइज और डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन इसराइल के साथ जो है वो खत्म करें, क्योंकि ये सारी चीजें हेल्प कर रही हैं इसको टू लेजिटिमाइज जीनोसाइड ऑफ पैलेस्टीनियंस। और उन्होंने ये भी कहा कि हम बिल्कुल जो मगिल यूनिवर्सिटी में अभी तक एनकैंपमेंट्स जो हैं वो चल रही हैं, तो उन्होंने कहा जी कि हम मगिल के साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं। अभी आपको पता ही है कि लास्ट वीक तक इधर हमारे यॉर्क यूनिवर्सिटी के अंदर भी एनकैंपमेंट चल रहे थे, अब हौले हौले उनको खत्म करने की कोशिश की, और उसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं बेचारे जो सीरियस पढ़ने वाले हैं उन्होंने काफी सफर किया है, क्योंकि ना तो वहां पर वो हो रही हैं ग्रेजुएशन सेरेमोनीज हो रही हैं या कुछ हो रहा है, और ये एनकैंपमेंट्स जो हैं, लेकिन वो कहते हैं जी हम किसी चीज को रोक तो नहीं रहे हैं। तो ये ऐसे है, और आज जो है इसका रिएक्शन ये हुआ है कि जो कनेडियन गवर्नमेंट है उसने आज मेलनी जोली साहबा जो उन्होंने अनाउंस किया है कि हम और सैंक्शंस लगा रहे हैं हम मैस को जो यहां से कोई लोग फाइनेंस शायद कर रहे हैं, तो पता नहीं अब क्या चल रहा है। अच्छा जी, अभी आपने सुना है यहां पे आमिर और मजिद भाई बता रहे थे जूलियन असांज का, दिस वॉज द बिगेस्ट न्यूज टूडे, विकीलीक्स के विसल ब्लोअर थे आपको पता ही है, और यूएस गवर्नमेंट के बहुत सारे सीक्रेट्स जो थे उन्होंने सामने लेकर आए थे, जिसकी वजह से यूएस गवर्नमेंट इसके बड़े खिलाफ हो गई थी। अब पता चला है कि एक प्राइवेट जेट के ऊपर बैठ के ये जो हैं यहां से चले थे मैरियाना आइलैंड से यूएस में, और ये अब बैंकॉक में यानी कि थाईलैंड के अंदर जो है वो पहुंचे हैं, लंदन से ये उड़े थे और बैंकॉक के डॉन म्यूंग एयरपोर्ट के ऊपर जो है ये पहुंचे हैं। इनको जो है बड़े अरसे तक इक्वाडोरियन एम्बेसी जो है लंदन में वहां पे इनको रखा गया था, और ये अवॉइड कर रहे थे कि मुझे ये स्वीडन में एक्स्ट्राडाइट ना किया जाए, सेक्सुअल असॉल्ट के जो चार्जेस भी इनके ऊपर आ गए थे जो कि बाद में ड्रॉप कर दिए गए थे। बेसिकली ये एक जर्नलिस्ट है, ऑस्ट्रेलियन एडिटर हैं, लेकिन अब इन्होंने गिल्टी प्लीड किया है दिस वीक ऑफ वायलेटिंग यूएस एस्पियोनेज लॉ, और उसके लिए इनको 62 मंथ्स की जो है वो जेल हो सकती है। लेकिन ऑलरेडी चूंकि ये टाइम काफी सर्व कर चुके हैं बंद कमरे के अंदर एम्बेसी में, तो अब देखेंगे शायद कि जज जो है इनके बारे में क्या कहता है, उसके बाद जो है ये फिर जब रिटर्न जाएंगे, जब यानी यहां से जब जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, तो अब पता चलेगा कि आगे चीजें कैसे चलेगी। इन्होंने कोई तकरीबन 700,000 कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो कि रिलेटेड थे यूएस मिलिट्री और एक्टिविटीज उनकी जो थी इराक और अफगानिस्तान में स्टार्टिंग 2010, वो सारे का सारा डाटा जो था वो पब्लिश कर दिया था, और जिसमें कि उन्होंने कहा था कि इन लोगों ने बहुत जुल्म वहां पे उनके लिए किए हैं। इनको जो है इन्होंने पहले एक जो है वो ट्वीट करते हुए बताया कि इनको बेल मिली है, और ये जो बेलमॉश जेल है स्टैनस्टेड एयर जो जेल है उससे स्टैनस्टेड एयरपोर्ट की तरफ जो नॉर्थ ईस्टर्न इंग्लैंड में है लंदन के पास, वहां पे ये जा रहे हैं। बहुत अरसे से जो यूएस था वो कोशिश कर रहा था कि इसको एक्स्ट्राडाइट किया जाए फ्रॉम यूके ताकि ये चार्जेस फेस कर सके अंडर 1970 एस्पियोनेज एक्ट, और लेकिन ये जो इनको छोड़ा गया है ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि बाइडन के ऊपर बेतहाशा प्रेशर डाला जा रहा था अमेरिका के अंदर कि ये बहुत लॉन्ग रनिंग केस है और अब आप इसको ड्रॉप करें, अब इसको खत्म करें, यानी कि इसका क्लोजर होना चाहिए। तो कभी भी किसी दिन भी लग रहा था कि इसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आज फिर इसको फाइनली जो है वो छोड़ा गया है। आज की एक और जो बहुत ही अहम और बड़ी आई ओपनिंग खबर है, क्योंकि दिस इज एब्सोल्यूटली नेक्स्ट लेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये मार्वल, इसको आप कह सकते हैं। 40 मीटर डीप इनसाइड बाल्टिक सी दुनिया का लॉन्गेस्ट जो है इमर्स टनल जो है वो बनाया जा रहा है, विच विल लिंक डेनमार्क एंड जर्मनी, और ये बहुत सारा जो टाइम है ये कट करेगा और ये ओपन होएगा 2029 में। जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फेमर बेल्ट टनल, इसका नाम है फेमर बेल्ट टनल, ये इसको ओपन किया था जून 17 को, एंड इट वाज ओपन बाय डेनमार्क्स किंग फ्रेडरिक 10 4 ईयर्स आफ्टर कंस्ट्रक्शन बिगैन इन 2020, और तकरीबन 10 साल लगे थे इसकी प्लानिंग को। डेनमार्क के जो ईस्ट के अंदर जो इलाका है रॉदबी हेवन, वहां पे 89 मैसिव कंक्रीट सेक्शंस जो हैं इस टनल के कंप्लीट किए गए थे लास्ट ईयर, और फर्मेन एएस जो स्टेट ओन डेनिश कंपनी है वो इंचार्ज है इस प्रोजेक्ट की, जो कि कहते हैं जी कि ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड प्रोडक्शन फैसिलिटी ऑफ इट्स काइंड है। और 18 किलोमीटर लॉन्ग फर्स्ट ऑफ यूरोप्स लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है इन्होंने कंप्लीट किया है, और इसके ऊपर टोटल कॉस्ट जो है 7.5 बिलियन यूएस डॉलर्स आई है। 50 किलोमीटर का जो ब्रिटिश चैनल जिसको हम कहते हैं, ये चैनल टनल जो कि लिंक करता है इंग्लैंड और फ्रांस का, जो कि कंप्लीट हुआ था 1993 में, उसकी बल्कि कॉस्ट जो थी 15.23 बिलियन यूएस डॉलर्स थी, तो उससे बहुत कम पे ये कर रहे हैं, लेकिन फिर डिस्टेंस भी जो है वो इतना ज्यादा नहीं है। ये बिल्ड किया गया है जर्मन आइलैंड ऑफ फेहमर्न और डैनिश आइलैंड ऑफ लॉलैंड के बीच में, यहां पे इन दोनों के बीच में फेरी सर्विस चलती है फ्रॉम रॉडबी एंड रिट गार्डन के बीच में, जो कि 45 मिनट्स लगते हैं यहां से डेनमार्क से जर्मनी जाने के लिए। जब ये टनल बन जाएगा तो इसमें जो ट्रेन है वो डेनमार्क से जर्मनी लोगों को 7 मिनट में पहुंचाएगी, और अगर कोई गाड़ी से जा रहा है तो वो 10 मिनट्स में डेनमार्क से जर्मनी पहुंच जाएगा। तो बहुत बहुत बड़ा ये जो है ह्यूज किस्म का एंड वेरी सिग्निफिकेंट ये जो है एक मार्वल ही कह सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा है वो कंस्ट्रक्शन का है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की आज ये स्टोरी है जी, और इसके मुताबिक जो रशिया का दागिस्तान का एरिया है वहां पे लड़ाइयां बहुत ज्यादा इंटेंसीफाई कर गई हैं। 20 के करीब जो हैं लोगों ने, जो आर्म्ड लोग थे, उन्होंने अटैक करके एक सिनागॉग और चर्चेज में और पुलिस पोस्ट जो थी उनके ऊपर हमले करके लोगों को मारा है। दागिस्तान के अंदर 3 डे का मौनिंग जो है उसका अनाउंसमेंट किया गया है, और यहां पे जो अटैकर्स थे ऑटोमेटिक वेपन्स लेकर आए थे और उन्होंने ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है ड्यूर्बन सिटी के अंदर जिसका नाम है रशियन ऑर्थोडॉक्स असम्पशन कैथीड्रल, यहां पे जो इसका कैपिटल है मक्का चकला वहां पे उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया था। ये जो इलाका है यहां पे ओल्ड ज्यूइश कम्युनिटी रहती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो देगस्तान का एरिया है ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। अटैकर्स जो थे और लॉ एनफोर्समेंट जो ऑफिशियल्स थे उनके बीच में फिर काफी हैवी गन फायर का एक्सचेंज हुआ और फिर उसके बाद जो है इन्होंने अथॉरिटीज ने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन लॉन्च किया जो कि रशिया में इनको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को जो है वो अथॉरिटी देता है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं पीपल्स मूवमेंट एंड कम्युनिकेशंस। आईसिस खुरासान जो है जो कि अफगानिस्तान बेस्ड है उन्होंने इसकी रिस्पांसिबिलिटी ली है, लेकिन रशिया कहता है कि हमें नहीं लगता कि आईसिस खुरासान इसके अंदर है, इसके अंदर यूक्रेन का रोल हमको लगता है। दागेस्तान जो है उसमें 50 डिफरेंट एथनिसिटीज रहती हैं और आपको पता ही है कि इसने अक्टूबर 29, 2023 को बड़ी हेडलाइंस बनाई थी जब एक क्राउड जो था उसने यहां पे मक्का चकला एयरपोर्ट जो थे उसके ऊपर ये सब लोग पहुंच गए थे और हमला बोल दिया था। जो फ्लाइट तेल अवीव से आ रही थी उसके खिलाफ इन्होंने मोर्चा निकाला था और कहा था कि इनको वापस भेजो और इन्होंने एंटी इसराइल स्लोगन्स जो थे वो भी चैंट किए थे। तो ये जो है बड़े ही अफसोस की यहां पर की खबर है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खामेनेई 85 इयर्स उनकी एज है और वो कह रहे हैं जी नाम तो उन्होंने नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा जी कि बड़ा एक यहां पे सुधार करने वाला कैंडिडेट आ गया है लेकिन आप उसको वोट मत दो क्योंकि वो जो है अलाइंड है टुवर्ड्स अमेरिका। आपको पता है कि कोई बहुत सारे 6-7 लोग जो हैं दे आर इन फ्रे फॉर ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं यहां पे ईरान में उसके लिए, तो उसी के ऊपर बात कर रहे थे अली खामेनेई और उन्होंने कहा जी कि ये एक आदमी जो है उसके बड़े अमेरिकन तरीकेकार है और वो उसको अमेरिका को सपोर्ट करता है तो उसको आप ना दें। अब ये बंदा कौन है? ये एक हार्ट सर्जन है मसूद पेजकशकियां, 69 इयर्स इनकी एज है और ये अपने आप को अलाइन करते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट हसन रूहानी के साथ। रूहानी जो थे उन्होंने हेल्प किया था ईरान का 215 न्यूक्लियर डील जो किया था इन्होंने वर्ल्ड पावर्स के साथ और मसूद जो है उन्होंने बिल्कुल इसको मान लिया था कंपेयर टू हिज अदर 5 हार्डलाइन अपोनेंट्स जो कि बहुत ज्यादा इस ईरान की डील को जो है वो कंडेम करते हैं। वो कहते हैं कि ये ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ईरान के टर्म्स पे ये डील होनी चाहिए थी। खामेनेई जो है उन्होंने कहा जी कि आपका मैक्सिमम टर्न आउट होना चाहिए, फ्राइडे को ये वोट होने वाला है प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शंस हैं उसके लिए, तो वो कहते हैं जी आप लार्ज नंबर्स में आए। और अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये जिनको रिप्लेस कर रहे हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी जो कि खामेनेई साहब के प्रोटेजी थे जिनका के हेलीकॉप्टर क्रैश में मई के महीने में भी आपको पता ही है कि डेथ हुई थी, उसके बाद फिर जो है ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होल्ड किए जा रहे हैं, तो पता नहीं है कि वो अब इनको इतना बड़ा नंबर में वोट्स दे सकेंगे या नहीं। खामेनेई साहब की जो आवर लॉन्ग स्पीच थी उसके अंदर लोग नारे लगाते रहे डेथ टू इसराइल, डेथ टू यूएसए और खामेनेई साहब ने बहुत दफा क्राउड्स को रोका अपनी स्पीच के बीच में कि भाई क्वाइट हो जाओ, क्या क्वाइट हो जाओ और जो है मुझे अपनी स्पीच खत्म करने दो, लेकिन लोग जो थे वो बड़े चार्ज नजर आ रहे थे। केन्या जो है वहां पे भी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, पुलिस ने आज यहां पे डेमोन्स्ट्रेटर्स के ऊपर उनको गोली आज चलानी पड़ी क्योंकि वो केन्या का जो लेजिस्लेचर है यानी कि जो पार्लियामेंट है उसके अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहे थे, इसके अंदर 5 प्रोटेस्टर्स जो हैं उनकी डेथ्स हुई हैं और कई ज्यादा लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं और पार्लियामेंट के कुछ सेक्शन जो थे उनको भी आग लग गई थी जिस वक्त लॉ मेकर्स अंदर बैठे हुए थे और पास कर रहे थे ये लेजिस्लेशन टू रेज टैक्सेस। नारोबी के अंदर ये जो प्रोटेस्टर्स थे इन्होंने पुलिस को ओवरवेल्म करके पार्लियामेंट के अंदर घुसने की कोशिश की जिसकी वजह से पुलिस ने फिर गोलियां चलाई, इसलिए क्योंकि टीयर गैस और वाटर कैनन्स जो हैं इनको बिल्कुल पीछे नहीं हटा रहे थे। उसके बाद पुलिस ने इवेंचुअली मैनेज किया इनको बिल्डिंग से पीछे पुश करने में प्रोटेस्टर्स को और जो लॉ मेकर्स थे उनको इवैक्यूएट किया एक अंडरग्राउंड टनल जो था उससे। इसमें जो मेन बात आज नजर आई यहां पे कि केन्या की जो एक्टिविस्ट हैं उमा ओबामा जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट हैं बराक ओबामा उनकी हाफ सिस्टर जो है वो इन प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं और एक इससे और भी इलाके की रिलेटेड खबर है कि फर्स्ट यूएन बैक्ड कंटिजेंट ऑफ फॉरेन पुलिस जो है वो हेटी में पहुंच गई है क्योंकि यहां पे भी बहुत ज्यादा गैंग वायलेंस चल रही है, लेकिन इसके अंदर जो है केन्या के बेशुमार जो हैं वो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो कि आज इनका जो कैपिटल है पोर्ट ऑफ प्रिंस उसके अंदर पहुंचे हैं। लेकिन लोगों का आज पूछना यही था दुनिया में कि जब केनिया के अंदर खुद इतनी मारामारी चल रही है तो फिर ये इधर कैसे आगे हैं यहां पे पीस करने के लिए। तो बहरहाल जी अंडर यूनाइटेड नेशंस जो है वो आए हैं तो पीस लाना तो अब उनका काम है वहां पे। एंड दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय पायल ज्वेलर्स। पायल ज्वेलर्स आपको पता ही है बड़े जबरदस्त इनके पास डिजाइन्स हैं, दुबई और सिंगापुर से ज्वेलरी लेकर आए हुए हैं। एंड दे आर लोकेटेड एट 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव यूनिट 42 ब्रैम्पटन और इनका नंबर है 9057907879। इसके अलावा चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल 1400 लोगों तक को आप इधर इनवाइट कर सकते हैं अपना खुद का पर्सनल या के कॉर्पोरेट इवेंट कर रहे हैं अगर। 32 रूम लग्जरी होटल है और दे आर लोकेटेड एट 2935 ड्यू रोड मिसिसागा और इनका नंबर है 6479653823। एंड जनाब डॉक्टर फरत हाशमी के साथ अगर आप वेस्टर्न कनाडा का टूर करना चाहते हैं तो आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इनको कॉल कर लें एट 6473884595। तो आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन इनसे मिल जाएगी। पाकिस्तान के अंदर जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम एडिशनल ड्यूटीज लगाएंगे सोलर पैनल्स के ऊपर क्योंकि ये फिर हिंडर करेगा यानी स्टॉप करेगा सिटीजन्स को कि वो सोलर पैनल्स लगाएं। और गवर्नमेंट मुस्तकिल तौर पे कोशिश कर रही है, लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि लो कॉस्ट एनर्जी उनका होना चाहिए तो लो कॉस्ट एनर्जी के लिए तो सोलर पैनल्स जो हैं वो बेस्ट हैं। इससे पहले इन्होंने कहा था जी कि हम सोलर नेट मीटरिंग करेंगे को चेंज करेंगे ग्रॉस मीटरिंग से जिसके बाद पता चला था कि जी टैक्सेस बहुत बढ़ जाएंगे और गवर्नमेंट को कहा गया था कि भाई इस तरह का कोई काम ना करो क्योंकि अगर आपको ये जो मुल्क की इकोनॉमी को आगे लेके जाना है और उसमें पॉजिटिविटी लानी है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर खुद भी कहते हैं तो एनर्जी कॉस्ट नीचे रखनी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर ने इस मौके पर कहा जी कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ चल रहा है। आज एक फेडरल कैबिनेट की मीटिंग जो है वो चेयर कर रहे थे इस्लामाबाद में और उन्होंने कहा जी कि इसमें हमने की डिसीजंस जो हैं वो बनाए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एसएमईज जो हैं उनको ज्यादा एडवांटेजेस देने की जरूरत है। एलीट क्लास जो है उससे एडवांटेजेस और प्रिविलेजेस लेने चाहिए और उन लोगों से भी जो नेशनल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं और कॉमन मैन जो है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। बजट 2024-25 के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी इसके ऊपर अभी डिबेट जो है पार्लियामेंट के अंदर चल रही है और सब लोगों को उन्होंने कहा जी कि आपको प्रेजेंट रहना चाहिए। कैबिनेट मेंबर्स जो थे फिर उनको उन्होंने इन्फॉर्म किया कि जी पीआईए की प्राइवेटाइजेशन जो है वो भी हौले हौले चल रही है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो है उन्होंने इसके अंदर इंटरेस्ट शो किया है और डिफरेंट एयरलाइन की जो साइट्स हैं उनको भी विजिट किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि इसकी बिडिंग जो है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि जो शुगर प्राइसेस इंक्रीज कर दी जाती हैं इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि मॉनिटर करेगी कि शुगर प्राइसेस ऊपर ना जाएं और अगर किसी ने एक्सपोर्ट करने की कोशिश की तो फिर उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। पहना आपके सारे अपने बंदे हैं तो आप एक्शन अपने बंदों के खिलाफ कैसे लोगे। बहरहाल जी बात तो आप कर सकते हैं ना। कल हमने आपको बताया था जी कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पीटीआई और जेयूआईएफ जो है उनका एतराज आया था अज़्म इस्तेकाम के ऊपर। तो इसके ऊपर बात करते हुए आज डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल सारे सेटिस्फैक्ट्री जो आंसर्स है वो आपको देगी कंसर्निंग दैट। आज मीडिया के साथ लाहौर में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि पीटीआई जेयूआईएफ एएनपी बाकी जिन जिन के भी कोई रिजर्वेशन हैं उनको हम ये बताना चाहते हैं कि ये फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन नहीं है, ये स्मॉल स्केल ऑपरेशन है और इसके अंदर लेकिन फिर भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और एलाइज जो हैं उनका कंसेंसस हम लेंगे और क्वेश्चन एंड आंसर पीरियड होगा उसके अंदर हम सबके प्रपोजल सुनेंगे, हम सबको कॉन्फिडेंस में लेके ये डिसीजन बनाएंगे। पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो एक प्रेस रिलीज आई थी उसके मुताबिक जो है वो कहा गया कि जी अज़्म इस्तेकाम जो है इसको गलत समझा गया है और इसको ज़र्बे अज़ब और राह निजात के कैटेगरी में डाला गया है। वो बहुत ह्यूज किस्म के मैसिव जो थे वो क्रैकडाउन थे टेररिस्टों के खिलाफ, ये इतना बड़ा नहीं है। ये जहां पे भी हियर एंड देयर कोई जो टेररिस्ट एक्टिविटी होगी उसके खिलाफ एक्शन किया जाएगा लेकिन ये एक उनको रास्ता देगा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है वो बनाया जाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा जी कि ये जो है हम इसको पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम जो है उसको आगे लेके जाएंगे, लेकिन उसमें इतनी परेशानी की बात नहीं है। पास्ट में भी बहुत सारे इस तरह के ऑपरेशंस जो थे उनको लॉन्च किया गया था, तो अब ये एक न्यू वन है जिसको लॉन्च किया जा रहा है। तो आई मीन उनका कहने का मतलब था व्हाट्स द बिग डील। अली अमीन गंडापुर और शिबली फराज ने भी आज पीटीआई के लीडर्स को कहा कि भाई डिटेल्स पहले सामने आने दो, फिर उसके ऊपर हम डिसीजन जो है अपना बनाएंगे। तो आज ये बात हुई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो है उसने आज रिजर्व किया है अपना वर्डिक्ट इन इद्दत केस ऑफ इमरान खान एंड उनकी जो वाइफ हैं बुशरा बीबी, क्योंकि उन्होंने कहा था जी कि हमारी ये सेंटेंसेस जो हैं सस्पेंड करो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अर्लियर दिस मंथ ऑर्डर किया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि वो डिसाइड करें इनकी जो प्लीज हैं उसको विद इन 10 डेज, और डायरेक्ट किया था कोर्ट को कि ये जो इनकी प्लीज सीकिंग एनोलमेंट ऑफ कन्विक्शन यानी कि इसको बिल्कुल खत्म किया जाए उसका भी फैसला एक महीने के अंदर करें। इमरान खान और उनकी बेगम जो है बुशरा बीबी, उन्होंने बहुत सारे मल्टीपल पिटीशन डाले थे और कहा था कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो है अपना जो है वो डिसीजन इसके ऊपर सुनाए, और उसी के लिए ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास अपील लेकर गए थे कि उनको आप डायरेक्ट करें। तो अब इनका जो वर्डिक्ट है इस सिलसिले में इद्दत केस में वो June 27 को 3 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक आएगा। इससे पहले जो ट्रायल कोर्ट थी उसने इन दोनों को 7 ईयर्स ईच जो थी सेंटेंस दी थी फरवरी के अंदर, और इनको फाइन भी किया था 500,000 ईच इद्दत केस के अंदर, क्योंकि जो इनके बुशरा बीबी के हस्बैंड हैं मानिका साहब, उन्होंने कहा था जी अभी इसकी इद्दत पूरी नहीं हुई थी और इसने इमरान खान से शादी कर ली थी। तो भाईजान को जल्दी याद आ गया जिस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त नहीं उसको ये बातें मानिका साहब को याद है, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस के चक्कर लगाता रहा और मजे करता रहा, और अब उसको जो है वो याद आ गया ये सारा कुछ। वाह जी वाह क्या बात है, असलाम है मानिका साहब आपकी मोरालिटी को, क्या बात है। अच्छा जी, बीबी जरदारी साहब जो हैं उन्होंने आज नेशनल असेंबली के सेशन जो चल रहा था उसके अंदर स्पीच की, और उन्होंने कहा जी कि ये जो पॉलिटिकल इनपुट है ये आपको लेना पड़ेगा जो बजट है 2024-25 के लिए, अगर आप अपने टारगेट्स मीट करना चाहते हैं। अगर आपने पॉलिटिकल इनपुट ना लिया तो आप जो भी काम बजट में करना चाहते हैं, जो लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं रहेगा। ग्राउंड रियलिटीज कुछ और हैं और पॉलिटिशियंस को उनके बारे में पता होना चाहिए, लेकिन ये जो बाबू इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं ये बाबू जो है ग्राउंड रियलिटीज नहीं जानते हैं। इसीलिए जरूरी है कि पॉलिटिशियंस के साथ बात की जाए, लेकिन बजट जो है वो बाबू बनाते हैं और वो समझते हैं कि जैसे जो है ये बिल्कुल हम सही मशवरे पॉलिटिशियंस को दे रहे हैं। अगर ये ऐसा ना किया गया, पॉलिटिकल इनपुट यानी कि ना ली गई, तो ये बजट होगा बाय द बाबूज फॉर द बाबूज एंड ऑफ द बाबूज। तो इसको जो है वो ये ट्रेडिशन को हम खत्म करना चाहते हैं भाईजान, तो फिर आप अपनी पार्टी में भी पहले ट्रेडिशन खत्म करो। आप तो आपकी फैमिली तो सबसे बड़ी बाबू पार्टी है जी। अच्छा जी, तो वो कहते हैं जी कि पीबीबी आपको पता ही है मेन एलआई है पीएमएलएन का, और बड़े अरसे से वो बजट के ऊपर जो है एतराज कर रहा है, हालांकि गवर्नमेंट चाहती है कि ये सारे एतराज खत्म हुए और July 1 को जो है ये इम्प्लीमेंट कर दिए जाए इसके सारे जो हैं। बहरहाल काफी सेवरल राउंड ऑफ टॉक्स आपको बताया हमने कि पीपीपी के जो चेयरमैन है बीबी जरदारी और शहबाज शरीफ साहब के बीच में हुए हैं, और अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो पीएमएलएन है उन्होंने बीबी जरदारी की काफी सारी बातें मानी हैं, लेकिन फिर भी आज बीबी जरदारी को बहुत ज्यादा जो था वो एतराज था। उन्होंने कहा कि आप मिल्क और स्टेशनरी के ऊपर टैक्स लगा रहे हो जबकि 40% जो है स्टंट रेट है हमारे मुल्क के अंदर, 26 मिलियन बच्चे जो है आउट ऑफ स्कूल है, और बाबू जो है आपको कुछ और ही सजेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि मैं होप करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान को जो मुश्किलें हैं उनसे बाहर निकालेंगे, और मैं खुशी है मुझे कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन अभी जो है वो कम आई है जिससे कि कॉमन मैन को थोड़ा सा साई ऑफ रिलीफ मिला, लेकिन अभी फिर भी उनको पूरी तरह से रिलीफ नहीं मिली है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज जो है वो बड़ी रियालिटी है, और अगर फ्यूचर जनरेशन के लिए हमने कुछ ना किया तो वो सफर करेंगे। तो भाईजान बड़ी अच्छी तकरीर आपने की है, लेकिन जब पीपीपी खुद गवर्नमेंट में होती है तब तो वो फिर इस तरह के काम क्यों नहीं करती है भैं पहन, लेकिन अब आप बड़े हो गए आप पूछना ठीक है ऐसा है। अच्छा जी ठीक है भाई सही। अच्छा पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है जी उसने अब ये जो डिसाइड किया था कि ये इनकॉर्पोरेट करेंगे सेनेट का प्रपोजल टू गिव एन अपॉर्चुनिटी इवन टू द नॉन फाइलर्स के वो हियरिंग जो है उनके की जा सकती है, जिस वक्त वो ये लॉ लेके सामने आए थे और प्रपोज किया था फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने कि उनका सिम ब्लॉक किया जाएगा और उनके ऊपर ट्रैवल जो है वो बैन लगाया जाएगा। तो फिर सेनेट ने कहा कि नहीं उनको एक अपॉर्चुनिटी अपनी बात करने का देना चाहिए, तो उसकी आज तारीफ की मोहम्मद औरंगजेब ने कि सेनेट ने जो है अच्छी रिकमेंडेशन दी है, और उन्होंने कहा था जी कि नॉन फाइलर्स जो हैं वो उनका हम सोच रहे थे कि ब्लॉक कर देंगे सिम कार्ड्स और ओवरसीज ट्रैवल, लेकिन फिर भी हम एनकरेज करते हैं उन सबको वो कि वो अपनी बात सामने रख सकते हैं कि वो टैक्स फाइल क्यों नहीं करते हैं। मोहम्मद औरंगजेब साहब ने कहा जी कि हमारा जो है वो डेफिसिट नैरो हो रहा है और हम अननेसेसरी कॉस्ट जो है उसको कट कर रहे हैं। भाई जनबी जो जरदारी साहब लड़काना गए थे 50 गाड़ियां आगे और पीछे थी, तो किधर आप अननेसेसरी कॉस्ट कम कर रहे हो हैं जी। अच्छा जी भारत, तो वो कहते हैं जी कि आईएमएफ की जो प्री रिक्विजिट्स हैं हमको पूरी तरह हम उसको फॉलो करेंगे और जाहिर है टैक्स और हम बढ़ाएंगे ताकि हमारे पास पैसे आए। तो वो कह रहे हैं जी कि ये जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसको हम कम करना चाहते हैं 7.4% से 5.9% पे। अगेन पैजन काफी हाई है लेकिन बहरहाल आप ज्यादा हमसे जानते हो। तो वो कहते हैं जी कि हमने इसीलिए ये इतना चैलेंजिंग जो है टैक्स रेवेन्यू टारगेट जो है ये रखा है। आपको पता ही, हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान का जब बजट इन्होंने मोहम्मद औरंगजेब साहब ने किया था तो उन्होंने कहा था कि हम 13 ट्रिलियन रुपीज का टैक्स रेवेन्यू टारगेट रख रहे हैं कि हम ये कलेक्ट कर सकेंगे फॉर द फिस्कल ईयर 2024-25। एंड ये जो था ये 40% जंप है फ्रॉम द करंट ईयर। तो अब ये पता नहीं कैसे करेंगे, कौन कौन इनको पैसे देगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि बड़ा कौन देगा कुछ पता नहीं है। अच्छा जनाब, आज जो हिंदुस्तान के अंदर भी चीजें बहुत ज्यादा अगली होती जा रही हैं, अब पाकिस्तानियां को सिख रहे हैं ना असल दे विच ते ऐस करके। कल हमने आपको बताया था कि राहुल गांधी जी ने कहा था, किताब लुटाई हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की और बाकी ऑपोजिशन ने भी, और उन्होंने कहा था बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर रही है। आज जी एनडीटीवी की न्यूज है कि आज होम मिनिस्टर अमित शाह साहब जो हैं उन्होंने बेतहाशा बातें सुनाई कांग्रेस को, और मतलब बातें तो हैं तो सच है, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की है जी। तो ऐसा है, लेकिन जरा थोड़ा इतना भी दिल दुखाना नहीं चाहिए किसी का। तो वारल जी उन्होंने काफी दिल दुखा दिया आज कांग्रेस का। उन्होंने कहा जी कि ये क्या बातें करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, ये कौन सा कोई कांग्रेस वाले बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते फिरते हैं। इन्होंने तो अपने जमाने में इमरजेंसी लगाई थी जो कि जो है वेरी स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, बल्कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को क्रश किया था जिस वक्त इन्होंने इमरजेंसी लगाई गई थी सिर्फ इसलिए कि एक सर्टन पार्टी जो है वो पावर में रह सके। आज उन्होंने ये बातें इसलिए की क्योंकि आज 49th एनिवर्सरी ऑफ 1975 इमरजेंसी जो है उसको इंडिया के अंदर मनाया जा रहा था। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो कांग्रेस का युवराज है, युवराज मींस राहुल गांधी, वो जो है उसको शायद भूल गया है कि उसकी दादी मां ने, इंदिरा गांधी ने इम्पोज की थी इमरजेंसी, और उनके जो वालिद साहब थे राजीव गांधी जी, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर July 23, 1985 में कहा था कि अगर इमरजेंसी मुल्क में लगती है तो उसमें ऐसा क्या खराबी है। और अपने एक्स पे उन्होंने लिखा जी कि इंदिरा गांधी ने तो एक रुथलेस एट्रोसिटीज जो थी वो हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ की थी ड्यूरिंग इमरजेंसी, और राजीव गांधी जी जो कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और उनको लगा कि ये बिल्कुल ठीक कदम था उनकी वालदा साहिबा का, तो ऐसा आदमी तो फिट ही नहीं था प्राइम मिनिस्टर होने के लिए। जो लोग डिक्टेटोरियल एक्ट्स को प्रमोट करते हैं और उसके अंदर जो है पावर लेते हैं, उसके अंदर प्राइड लेते हैं और एक पार्टी को, एक खानदान को पावर में रखने के लिए काम करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें क्या करेंगे। ये एक इंतहाई एरोगेंट और ऑटोक्रेटिक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जिसको के फिर जिसने के सस्पेंड किए थे लोगों के सिविल राइट्स फॉर 21 मंथ्स एक खानदान को पावर में रखने के लिए। बार बार उन्होंने 6-7 बार कहा एक खानदान को पावर में रखने के लिए। उन्होंने कहा जी कि जो इमरजेंसी है वो बिगेस्ट एग्जांपल है कांग्रेस की लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ किलिंग डेमोक्रेसी, और इसने रिपीटेडली डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाया है। इन्होंने मीडिया को सेंसर किया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, इन्होंने जुडिशरी जो है उसको बिल्कुल रोक दिया था फैसले लेने से, और उन्होंने बड़ी तारीफ की उन लोगों की जिन्होंने कि इस काले वक्त के अंदर जो है वो फाइट की थी। इसके साथ साथ जी जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा साहब, उन्होंने भी कहा जी कि वो लोग जो कि बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी के बड़े हम गार्डियंस हैं, या उन्होंने तो सबसे ज्यादा जो है वो काम किया था ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमारे डेमोक्रेसी थी उसको खराब करने के लिए। इसके साथ साथ बीजेपी के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी कहा जी कि इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी 1975 में, जो कि फिर उन्होंने उनको उठानी पड़ी 1977 में और फिर इलेक्शन करवाने पड़े, वो एक डार्क हिस्ट्री का चैप्टर है इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर जिसको कि कभी भी भुलाया नहीं जाएगा। उन्होंने एक डिक्टेटरशिप चलाई थी और अपनी पावर का मिसयूज किया था और उसका ब्रेजन डिस्प्ले किया था। तो अब बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि ये लोग ज्यादा कमिटेड हैं डेमोक्रेसी के लिए या बीजेपी ज्यादा कमिटेड है डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है भाई, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या पैशनेट स्पीचें की हैं। अच्छा जी अच्छा। और जनाब जो है छुरी लटका दी गई है, एमपी जो है एआईएमआईएम के चीफ जो है असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भी, और हैदराबाद से ये एमपी का भी इलेक्शन जीते थे पांचवीं बार लोकसभा का, और इन्होंने जब स्पीच एक बड़ी कर रहे थे अपना जब ओथ टेकिंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा जी कि जय तेलंगाना जय बीआर अमितगर, और उन्होंने कहा जी जय पैलेस्टाइन फलस्तीन जय फलस्तीन, और ये कहा जय भीम जय मीम जय तेलंगाना और जय पैलेस्टाइन। तो उसके ऊपर जो है लोग बड़ा भड़क गए, उन्होंने कहा जी कि ये आपको किसी और फॉरेन कंट्री का ओथ टेकिंग पे नाम नहीं लेना चाहिए था, तो उन्होंने कहा जी कि कहां पे लिखा है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कि मैं पैलेस्टाइन का नाम नहीं ले सकता। उनसे जब पूछा गया, मीडिया ने पूछा कि आपने पैलेस्टाइन का नाम लिया मगर क्यों, उन्होंने कहा जी क्योंकि वो ओप्रेस्ड किस्म के लोग हैं, और उन्होंने कहा जी कि आप महात्मा गांधी के बारे में पढ़ें कि उन्होंने पैलेस्टाइन के बारे में क्या कहा है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो है किरण रिजिजू, उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है और हम ओथ टेकिंग के अंदर किसी भी और कंट्री का नाम नहीं ले सकते, हालांकि हमारी दुश्मनी किसी भी कंट्री के साथ नहीं है, और किसी और मुल्क का नारा लगाना ऐसे जो है गलत बात है। बीजेपी के आईटी सेल हेड जो है अमित मालविया, उन्होंने भी एक जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 102 है उसका एक स्निपेट डाला एक्स के ऊपर, और उन्होंने कहा जी कि इनको डिसक्वालीफाई करना चाहिए इनके लोकसभा मेंबरशिप से। इसके अलावा इंडिपेंडेंट जो एमपी हैं राजेश रंजन, उन्होंने भी जिनको प्यार से कहा जाता है पप्पू यादव, तो पप्पू यादव साहब जो है उन्होंने भी जो भी जीते थे बिहार के पर्निया के एरिया से वो भी ओथ ले रहे थे, और उन्होंने भी इसी तरह का कहा जय बिहार, और जो है फिर उनकी जो टी शर्ट बल्कि जो पहन के आए हुए थे उसके ऊपर लिखा हुआ था री नीत, और आपको पता ही है कि ये नीट पीजी के जो अभी एग्जाम्स हुए हैं उसके अंदर कहा गया है कि जो अपने चहेते स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो पेपर जो है लीक किया गया था, जो कि बहुत बड़ा इस वक्त स्कैंडल हिंदुस्तान में बना हुआ है, तो उन्होंने कहा जी कि आपने भी मर्यादा यानी कि ट्रेडिशन और रिस्पेक्ट जो है उसकी हाउस की वो खराब करने की कोशिश की है। तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए पप्पू यादव साहब ने कहा मैं 6 दफा का एमपी हूं, तुम मुझे बताओगे कि राजनीति कैसे करनी है, तुम मेरे से आके सीखो राजनीति। ठीक है बहन खुश हो, ते जनाब सारे उधर भी पाकिस्तान की एग्जांपल ले रहे हैं, भड़क गए हैं लोग भड़क गए हैं। और जनाब इमरजेंसी की हमने अभी बहुत बात की, तो हमारी जो बाजी है कंगना रनावत साहिबा, उन्होंने भी आज अनाउंस की है अपनी जो उनकी फिल्म आ रही है इमरजेंसी, उसकी नई डेट्स उन्होंने बताई हैं, और एक लुक उनकी देखी जा रही है, कैमरे से दूर देख रही हैं, और उसका कैप्शन जो है नए पोस्टर का वो कह रहा है 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज डार्केस्ट चैप्टर इमरजेंसी इन सिनेमाज वर्ल्ड वाइड ऑन September 6, एक्सप्लोजिव सागा ऑफ मोस्ट कंट्रोवर्शियल एपिसोड ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये उन्होंने जो अपने कैप्शन के अंदर लिखा है, जाहिर है कि ये इमरजेंसी वही है जो कि फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, और जो है कंगना रनावत साहिबा जो है वो इंदिरा गांधी का रोल प्ले कर रही हैं इसके अंदर। एक नया इंटरव्यू सामने आया जी करण जौहर साहब का, और उनसे उसमें पूछा गया कि भई आप कॉफी विद करण का नया जो अब है सीजन किस वक्त लेकर आ रहे हो, तो उन्होंने कहा जी कि अब कॉफी विद करण का नया सीजन 2025 में वापस आएगा, जो लास्ट सीजन था 8th सीजन जब वो लास्ट ईयर रिलीज हुआ था, तो उसके अंदर रणवीर सिंह और दीपिका पाडुकोन जो थे इसके फर्स्ट गेस्ट थे, जब उनसे पूछा गया कि फर्स्ट गेस्ट कौन है तो उन्होंने कहा प्लीज गेसिंग, और अब ये जब 2025 में आएगा तभी सारी डिटेल्स रिवील की जाएंगी। अरबाज खान आपको पता है वो भी एक चैट शो करते हैं, और उनका पहला जो चैट शो था द इनविंसिबल्स वो बड़ा जबरदस्त गया था, तो अब वो सेकेंड सीजन उसका द इनविंसिबल्स का लेकर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक पूरी अपनी गेस्ट लिस्ट जो है वो रिलीज कर दी है। उन्होंने कहा जी इस दफा मेरी गेस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लोग जो हैं वो हैं आशा पारेख, प्रेम चोपड़ा, शबाना आजमी, फिल्म मेकर्स रमेश सिप्पी, डेविड धवन एंड सुभाष घई। तो जो प्रोमो आया है उसमें देखा जा रहा है कि जी प्रेम चोपड़ा अपनी आइकॉनिक डायलॉग बोल रहे हैं, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, घई साहब जो हैं वो उनसे पूछ रहे हैं अरबाज के आप दो एक्टर्स ऐसे बताओ जिसके साथ काम करना आसान था और मुश्किल था, तो उन्होंने बड़ी हैरत का इजहार कर रहे हैं वो। सिप्पी साहब जो हैं वो अपनी जो कल्ट मूवी है 1975 की शोले उसके ऊपर बात करते हुए देखे जा रहे हैं। शबाना आजमी जो है वो अपने हस्बैंड जावेद अख्तर के ऊपर काम बात करते हुए सुनी जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा जी इनको एल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम हो गया था और फिर उन्होंने खुद ही फैसला किया कि मैं ड्रिंकिंग छोड़ दूंगा क्योंकि फिर मैं अपना क्रिएटिव काम भी नहीं कर सकूंगा और ज्यादा देर जिंदा भी नहीं रहूंगा। डेविड धवन जो है वो बात कर रहे हैं गोविंदा से के बारे में, तो अरबाज उनसे पूछ रहे हैं आपने 16-17 फिल्म्स उनके साथ की हैं तो क्या गोविंदा आपके सेट पे भी लेट आते थे? तो डेविड ने कहा सिर्फ मैं ही उसको हैंडल कर सकता था। इसके अलावा आशा पारिक से उन्होंने पूछा जी कि आपके बारे में क्या क्या कहा जाता था, तो सुना जा रहा है कि वो कह रही हैं जी कि एक दफा किसी ने कहा था कि तुम तो एक्ट्रेस मटीरियल ही नहीं हो। तो लग रहा है कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये इनविंसिबल्स। ठीक है जी, और जनाब T20 वर्ल्ड कप 2024 बस एंड पे आ गया है और चार लास्ट गेमें इसके अंदर रह गई हैं। सेमीफाइनल्स जो हैं उसके अंदर अब आगे हैं वेस्ट इंडीज, इंडिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका, जिन्होंने के नहीं सॉरी सेमीफाइनल्स वेस्ट इंडीज में होंगे। इसके अंदर जो लोग आ गए हैं वो हैं इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान। और आपको पता ही है कि अफगानिस्तान ने कल जबरदस्त मैच खेला है जो है बांग्लादेश के अगेंस्ट, 8 रन से उनको हराया डीएलएच मेथड के थ्रू इन द सुपर 8 मैच। इन्होंने जो है तो ये अब चार टीमें जो है क्वालिफाई कर गई हैं। मैं फिर से नाम ले लूं, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो था उन्होंने पहले खेलते हुए 115 बनाए थे फॉर 5, उन्होंने बॉल आउट किया बांग्लादेश को फॉर 105 फॉर 17.5 ओवर्स और रेन की वजह से फिर उसको रिड्यूस किया गया था फॉर 114 फॉर 19 ओवर्स। तो अब जब सामने ये चार टीम्स आ गई हैं तो सेमीफाइनल्स की जो है वो भी टीमें सामने आ गई हैं। फर्स्ट सेमीफाइनल जो जून 26 को होगा साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान के साथ होगा एट ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी ट्रिनिडैड एंड टोबैगो में 8:30 PM टोरंटो टाइम के मुताबिक। सेकंड सेमीफाइनल जो है जून 27 को होगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एट प्रोविडेंस स्टेडियम जॉर्ज टाउन गाना के अंदर एट 10:30 AM टोरंटो टाइम, और फाइनल जो है फिर वो जून 29 को होगा। तो हम आपको जैसे बता ही रहे हैं कि 26th और 27th जो है उसमें हमारे साथ 27th एंड 28th जो है उसमें हमारे साथ सिकंदर बख्त साहब होंगे, तो हम उनके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग जो है बातें करेंगे सेमीफाइनल्स पे, और फिर जाहिर है एक दिन के बाद फाइनल है तो उसके ऊपर हम फिर उनसे एक्सक्लूसिव टॉक करेंगे और हम उनके इम्प्रेशंस लेंगे कि भाई कैसा ये चला, पाकिस्तान टीम की कहां गलतियां थी, क्या उनको अब करना चाहिए, वो सारी बातें जो है हम अपने वेटरन स्टार क्रिकेट स्टार जो है सिकंदर बख्त उनके साथ करेंगे, आपके लिए स्पेशली लेकर आएंगे। अफगानिस्तान के जो कैप्टन हैं जी राशिद खान साहब वो अब क्विकेस्ट बॉलर बन गए हैं टू बैग 150 विकेट्स इन 100 T20s और ये इन्होंने किया है 92 मैचेस में। सेकंड बॉलर हैं टू टेक 150 विकेट्स। न्यूजीलैंड के जो टिम साउदी थे वो पहले थे जिन्होंने ऐसा किया था, लेकिन उन्होंने ये जो विकेट्स हैं वो 118 मैचेस में लिए हैं। इसके अलावा शकीब उल हसन जो है बस वो एक विकेट इनसे पीछे रह गए हैं और वो भी इनके पास पास आ रहे हैं। इन्होंने लेकिन शकीब ने प्ले किया 129 T20s और अभी भी वो एक विकेट पीछे हैं। अफगानिस्तान ने फिर भी एक और भी हिस्ट्री क्रिएट की कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने T20 वर्ल्ड कप के सेमीज के लिए क्वालिफाई किया है, जो कि हमने आपको भी बताया कि बांग्लादेश को इन्होंने बीट किया है सुपर 8 के मैच में और इस जिसके के अंदर राशिद ने चार विकेटें ली जी फॉर 23 रन। अफगानिस्तान के इब्राहिम जदरान और रहमुल्ला गुरबाज जो हैं वो भी उन्होंने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का जो रिकॉर्ड था मेजर पार्टनरशिप का इन T20 वर्ल्ड कप 2024 में तोड़ा है और ये अगेन इन्होंने किया है सुपर 8 का जो मैच बांग्लादेश के साथ था इनका एट आर्नोसवेल ग्राउंड किंग्सटाउन सेंट विंसन के अंदर और इन्होंने जी हाईएस्ट पार्टनरशिप रन जो है सिंगल एडिशन ऑफ वर्ल्ड कप में बनाए हैं। दे स्कोर्ड 422 रन पार्टनरशिप और इन्होंने जो है स्कोर किए हैं इसी प्लेयर ने स्कोर किए हैं 450+ पार्टनरशिप्स भी और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 3 सेंचुरीज पार्टनरशिप का। बाबर और रिजवान के बीच में जो पार्टनरशिप थी वो 411 रन्स की थी एट वर्ल्ड कप 2021। ऑस्ट्रेलियन ओपनर डेविड वार्नर हालांकि सिर्फ 37 इयर्स के हैं मगर आज इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि ये जी जो हैं अब बाय बाय टाटा कह रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को आफ्टर 15 इयर्स क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो T20 से अब निकल चुका है। अफगानिस्तान ने चूंकि इनको डिफीट किया था जिसके ऊपर इनको काफी बातें सुननी पड़ी थी ऑस्ट्रेलिया को कि इनके प्लेयर्स ने क्या किया अफगानिस्तान से कैसे हारे हैं। बारा जी ये जो है अब इन्होंने कहा है कि जी मैं बाय बाय टाटा कर रहा हूं। इन्होंने 110 T20s खेले हैं और इन्होंने बनाया 3277 रन, एक इनकी सेंचुरी है, 2850s बनाई हैं इन्होंने एट एन ऑसम स्ट्राइक रेट ऑफ 142.47। इससे पहले इन्होंने पहले ही कह दिया था कि T20 ये जो है मेरा लास्ट T20 होएगा और इन्होंने जो अपना फाइनल ODI खेला था वो नवंबर में वर्ल्ड कप जो کھیلا تھا فائنل میں جس میں کہ ان کی جیت ہوئی تھی انڈیا کے خلاف, اور لاسٹ ٹیسٹ جو تھا انہوں نے پاکستان کے خلاف جنوری میں کھیلا تھا. تو جب یہ افغانستان اور بنگلہ دیش کا میچ تھا جس میں کہ لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید اللہ کرے بنگلہ دیش ہرا دے افغانستان کو, جو نہیں ہو سکا, تو جوش ہیزل وڈ نے اس میچ سے پہلے کہا تھا کہ ہم یہ جو ڈسیزن ہے اس کے ریٹائرمنٹ کا اس میچ کے بعد بنائیں گے. ظاہر ہے کہ اس میں افغانستان جیتا, آسٹریلیا باہر ہو گیا, اور پھر فارملی انہوں نے اپنی اناؤنسمنٹ کر دی. اینڈ جناب, یورو 2024 کے بھی زبردست قسم کے میچز چل رہے ہیں, ان کی بھی ہم آپ کو ڈیٹیلز بتا دیں. اسپین جو ہے جی 1-0 سے وہ جیتا ہے البینیا کے ساتھ, اور تھینکس ٹو فیرن ٹورس جس نے کہ فائنل ایک میچ ایک گول کر کے اپنی ٹیم کو جتایا. لیکن اسپین کا جو سکور ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے, تین میچز کھیلے ہیں, تینوں کے تینوں اپنے گروپ بی میں وہ میچز جو ہیں وہ جیتے ہیں, اور ایز اے ریزلٹ جو ہیں وہ جو راؤنڈ آف 16 ہے اس میں پہنچ گئے ہیں. اس کے علاوہ اٹلی کے جو میٹیا زگیگنی ہیں انہوں نے جناب اپنی ٹیم کو 98 منٹ میں بچا لیا کروشیا کے اگینسٹ, 1-1 سے جیتے, تو اب وہ بھی جو ہے راؤنڈ آف 16 میں چلے گئے ہیں. اٹلی جو ہے البتہ اس کے پاس دو, اس نے سیکنڈ نمبر پہ ہے کیونکہ اس کے پاس چار پوائنٹس ہیں. کروشیا جو ہے وہ تھرڈ نمبر پہ ہے, اس کے پاس ٹو پوائنٹس ہیں. اٹلی جو تھا اس کا, اس نے جو تھا وہ ڈیفیٹ ہوا تھا اسپین سے اس سے پہلے, تو ان کے لیے بڑا ضروری تھا کہ یہ جو ہے اب اس میچ کو جیتے, بہرحال یہ ڈرا کر سکے کروشیا کے ساتھ. کروشیا جو تھے اس نے جو ہے اسپین سے 3-0 پہ ہارے, اور پھر اسپین نے البانیا کے ساتھ ڈرا کیا 2-2 پہ, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ اب جو ہے وہ, تو اب یہ ان کا نہیں, انہوں نے سوری 1-0 سے البانیا سے یہ جیتے ہیں, تو اب ان کا جو ہے پرفیکٹ سکور ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. اور یہ جناب میچز جو ہیں ابھی چل رہے ہیں, تو جیسے جیسے یورو کے بھی اب میچز چلیں گے ہم اس کے بھی ریزلٹس بتائیں گے, کیونکہ ویسے بھی ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ جو ہے
کوپا امریکہ,
ہاں کوپا امریکہ, یس اس کے بعد ہوئے گا
کوپا امریکہ. آج سے کینیڈا کی باری بھائی, کینیڈا از پلینگ ٹوڈے,
یا
کینیڈا از پلینگ ٹوڈے, اینڈ ایوریبڈی ریڈی, کینیڈا از پلینگ, کینیڈا ہیز ٹو ون ٹوڈے, کیونکہ پہلا گیم وہ
کینیڈا کی جو بیچاری ٹیم ہے نا وہ اب پیرس اولمپکس کے لیے بڑھیا تیاریاں کر رہی ہے, تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید پیرس اولمپکس میں کافی میڈل شیڈل لیں گے
انشاءاللہ. ہم جانے والے نہیں گئے,
ہاں 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 ادھر ہی بیٹھے ہم, ہم جاتے نہیں ہیں ویسے بھی, چپک جائیں کرسی تو چھوڑتے نہیں ہم,
ایسا بس یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی پری ریئیکشن غلط ہوئی تھی تو کوئی بات
نہیں, کل
اتنا بڑا ہے
نہیں, پری ریڈکشن میری اور عامر کی کل ٹھیک تھی,
اس کی بات ہی نہیں کرتے.
جیشان کی کل غلط تھی, جیشان کہہ رہا تھا بنگلہ دیش جیتے گا, ہم کہہ رہے تھے افغانستان جیتے گا.
ہم جو ہے نا اتنے بڑے دل والے لوگ ہیں کہ اگر کسی کی پریڈکشن غلط بھی ہوگی نا ہم اس کی بات نہیں کرتے,
ہوئے 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 ہوئے,
ہم قطعی طور پر بات نہیں کرتے آسٹریلیا ہار گیا, نہیں مطلب ہم
ایک پریڈکشن پورے اس میں غلط ہوئی ہے مجد بھائی, اس کے ساتھ آپ
یہ تھی ہماری
مزاحیہ ہو گئے آپ,
یہ تھی ہماری آج کی نیوز, بقیا کی نیوز ان شاء اللہ تعالی کل اسی وقت ہم یہاں پر آپ کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے, اور پھر بتائیں گے ہم کینیڈا کیسے جیتا,
جیتا بھی کہ نہیں,
ٹو دا تھنگ, ٹو دا تھنگ مار دینا. اینڈ اسٹینلی کپ جی,
اولیئرز ہے, آئلرز ہے, یہ کیا ہے
آئلرز,
آئلرز کیوں, ان کے پاس تیل بہت ہے, تیل کے کنویں ہیں, کیا ہے کہ چکر گیا ہے
وہاں پہ ویسٹ میں ہے نا یہ تو,
اچھا تیل کے کنویں ہیں ان کے,
تیل کے کنویں ہیں جی,
اچھا اچھا چلو پھر ادھر ہی جا کے بستے ہیں, گریب جگہ پہ ہم کیوں رہ رہے ہیں جہاں پہ وہ آئل کے ویلز ہیں وہیں چلتے ہیں,
وہاں پر البرٹا میں کیلگری میں سب بہت تیل ہے,
پھر ادھر ہی چلو مجھے
تیل
ہے, ادھر اپنا تیل نکالنے کے لیے بیٹھے ہو,
راستے میں جائیں آپ وہیں سے تیل کو نکالا آپ نے سر پہ لگا دیا,
تو وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا چلو اتنے جا کے لوگوں نے تیل پہ لیے تھے اپنا تیل نکل رہا ہے, چلو اتنے چلیے
صاحب. یہ تھی آج کی نیوز, اینڈ یس آئی واز سیئنگ فلوریڈا got the Stanley Cup and Canada 1993 کے بعد سے ابھی تک جیتے ہم,
یہ تو پھر باتیں نہیں کرتے ہیں,
کینیڈا تو پھر بھی اچھا ہے 1993 کے بعد سے, لاسٹ 1993 میں کینیڈا نے جیتا تھا, مینس کینیڈا کی کوئی ایک ٹیم نے, ناٹ کینیڈا, کینیڈا کی کوئی ایک ٹیم نے جیتا تھا, اور مگر ہمارے کون سے ہوتے ہیں ہمارے
یاد بھی نہیں ہے اتنے گندے پلیئر,
ٹورانٹو کے کون سے ہیں,
اتنے گندے پلیئر ہیں
ٹورانٹو کے, میپل لیفز آپ
67 से नहीं जीते
कमाल कमाल जीतना भी कोई हारना इतने लंबा हारना कोई मजाक की बात है मजाक की बात है आप ऐसा मजाक ना क्या करें हाँ
लोग पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त तब से हार रहे हैं ये
हार रहे जी और इस दफा देख लो
अब देखो बाहर मिलो
बाहर मिलो इस दफा हमने सारी टीमों को कह दिया तुम बाहर
बाहर मिलो
बाहर मिलो हमें टोरंटो मेपल लीफ्स शायद जीतेगी का मुझे पता नहीं है
माजद भाई वैसे क्रिकेट में इतने लोग पहल वह ले लेते हैं ये आपके ये जो है ये मेपल लीफ है कोई पहल या देखे कोई काम शाम नहीं सेट करते
पकड़े जाते ना वो
इतने गंदे तरीके से देते हैं
हाँ पकड़े जाते ना वो थैली भी ला के दे दिया वो ऐसे भी देते
ऐसे कोई देता है छुप छुपा के देता है कोई प्यार मोहब्बत से मिलते हैं कोई हाथ शाथ मिलाया हाथ में दे दिए ऐसे
इनको आता नहीं है आपको देखे एक्सपीरियंस है इनको इनको आता नहीं है
हाँ मुझे मेनू दे देखो जी जरा मेपल लीफ वाले हो मेरे नाल कट सेट करो मैं तुम्हें दसनी हूँ पैर देके कैसे आपको जिताना है और उनको हराना है
दूसरों को हराना है
हराना है हाँ उनको बोलेंगे भाई गंदा खेलो
और मिलियन डॉलर आपके
हाँ मिलियन डॉलर मेरे बस
चलिए साहब स्टे ट्यून इधर ही रहिए आप कहीं जाना नहीं आपने क्योंकि क्रिकेट का स्पेशल शुरू होने वाला है अब
स्पेशल होता है मजे भाई स्पेशल
एंड शारजा जी इधर होंगी हमारे
आमिर ज़ीशान है और साथ हमारे आज हैं केसर कुरैशी
अच्छा केसर कुरैशी
कल है हमारे साथ अमिताभ